ज्ञान से जनतक INSA की नई परिभाषा। नई दिल्ली में एक शांत ऐतिहासिक भवन खड़ा है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, जिसे हम INSA कहते हैं। ये वो जगह है जहां देश के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों की सोच इकट्ठा होती है, एक ऐसा मंच जहां विज्ञान का भविष्य तय होता है। और इस मंच पर एक नया अध्याय शुरू हुआ प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की अध्यक्षता में। देश के श्रेष्ठ 1000 से भी अधिक वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था ने पहली बार एक ऐसा नेतृत्व पाया जिसने प्रयोगशालाओं से निकलकर समाज की ओर देखा। प्रोफेसर शर्मा को यह गहरा एहसास था कि केवल चुनिंदा वैज्ञानिकों को जोड़कर विज्ञान आगे नहीं बढ़ता, उसे लोगों तक ले जाना जरूरी है। इलीट से एवरीवन तक, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ साइंस। प्रोफेसर शर्मा ने INSA के मंच को इलिटिज्म से ऊपर उठाकर एक जनांदोलन की शक्ल देने की पहल की। उन्होंने सवाल उठाया, अगर विज्ञान केवल एक सीमित समूह तक सीमित रह जाए तो क्या वो वास्तव में विज्ञान है? पहला बीज, उम्र की सीमाओं को तोड़ना। INSA की परंपरा थी, औसतन 58 वर्ष की उम्र के बाद ही कोई फेलो बन पाता था। लेकिन क्या युवाओं के पास प्रतिभा नहीं होती? क्या नए विचारों को मंच नहीं मिलना चाहिए? प्रोफेसर शर्मा ने एसोसिएट फेलोज की शुरुआत की 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों के लिए, और उससे भी आगे बढ़कर बनाए यंग एसोसिएट्स 40 वर्ष से कम उम्र के लिए। अब पहली बार INSA में 30 से लेकर 70 तक की उम्र के वैज्ञानिक एक साथ विज्ञान की चर्चा में शामिल हुए। एक पीढ़ियों का संगम बना।
But we wanted to do much more. So there are, what are the challenges of the academy? Challenges of academy is that of course the membership is elite, but we through this membership we should do democratization of science. In other words, we should take the science to everybody, to inspire them, to excite them, and it should be diverse. So which means we require diversity in academy. We are talking about diversity of age and gender and the regional geographic location. We are talking about diversity also of the areas pursuit that scientists are doing. So one of the things that we could do in last 2 years is first to address the question of diversity. So we find that the average age of fellows at the time of their election to academy is about 58 years. That is because obviously younger people cannot compete directly with people in terms of accomplishments and so on. So we said, look, what we'll do is we'll make associate fellows of the academy who are below 50 years. Then we'll also make young associates of academy who are below 40 years. So which means now we have actually people who have entire spectrum of ages, below 40, below 50, and everybody else.
INSA, जहां विज्ञान को मिला नारी दृष्टि का विस्तार। कभी विज्ञान की दुनिया को पुरुष प्रधान क्षेत्र समझा जाता था। सम्मेलनों में, सेमिनारों में, अकादमियों की बैठकों में सफेद कोट और ग्रे बालों वाले पुरुष वैज्ञानिकों का बोलबाला था। पर INSA में एक नई सुबह ने दस्तक दी जब प्रोफेसर आशुतोष शर्मा INSA के अध्यक्ष बने। उन्होंने सबसे पहले उन आवाजों की कमी को महसूस किया जो अब तक इस मंच से दूर रहीं महिलाएं। INSA की कुल फेलोशिप में महिलाएं सिर्फ 8% थीं। ये आंकड़ा एक चेतावनी भी था और आमंत्रण भी। और तभी उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की, INSA वुमेन एसोसिएट्स प्रोग्राम। अब हर साल पूरे भारत से 70 प्रतिभाशाली महिलाओं को चुना जाएगा, केवल लैब्स से नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र से, रिसर्च से, उद्योगों से, शिक्षा जगत से, सरकारी सेवाओं से, एनजीओस और स्टार्टअप्स से भी। अब विज्ञान की संगोष्ठियां बदल चुकी थीं। उन हॉल्स में अब सिर्फ PhD नहीं, अनुभव बोल रहा था। अब वहां लैब कोट के साथ साथ कपड़ों में सादगी, आंखों में आग और जीवन में उद्देश्य भी था। वहां एक महिला थी जो एक औद्योगिक प्लांट में R&D विभाग संभालती थी, एक और जिसने गांवों की महिलाओं के लिए हेल्थ टेक ऐप बनाया था, कोई विज्ञान अध्यापिका थी जो सरकारी स्कूल में बच्चों को रसायन से कविता जोड़कर पढ़ाती थी। जब महिलाएं जुड़ती हैं तो विज्ञान में न सिर्फ गहराई आती है बल्कि करुणा, संवेदना और समुदाय की समझ भी बढ़ती है। अब INSA में ये विमेन एसोसिएट्स न केवल भागीदारी कर रही थीं, बल्कि प्रभाव भी बना रही थीं। वे सम्मेलन में बोल रही थीं, नीतियां गढ़ रही थीं और युवा वैज्ञानिकों के लिए रोल मॉडल बन रही थीं। ये विज्ञान की दुनिया का सच्चा विस्तार था, जहां अब प्रयोगशालाओं के दरवाजे नहीं सोच के द्वार खुल चुके थे। प्रोफेसर शर्मा जानते थे, सच्ची प्रगति तब होती है जब मंच पर सबकी आवाज हो और हर दृष्टिकोण को सम्मान मिले। इसलिए उन्होंने न सिर्फ संख्या बढ़ाई बल्कि दिशा बदली। अब विज्ञान एक संकुचित बस्ती नहीं रहा, अब वह एक समावेशी समाज बन रहा था। और जब अगली बार किसी युवा लड़की ने पूछा, क्या मैं भी वैज्ञानिक बन सकती हूं, तो जवाब आया, तुम्हारा नाम INSA की अगली सूची में हो सकता है।
सर ने लाइफ को जिस मैग्नीट्यूड से देखा है, जिस करीबी से समझा है, उसके बाद उनको ये समझ में आ गया है कि लाइफ इज जस्ट अ जोक, और इसीलिए वो पूरे के पूरे सिचुएशन को, पूरी की पूरी एक सबसे बड़ी से बड़ी सिचुएशन को, सबसे टफ से टफ सिचुएशन को वो इतना लाइट कर देते हैं। ये उनकी क्वालिटी है। अ पर्सन ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, जिसको कितना सीरियस होना चाहिए, हैज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ ऑल जोक, वी आर ऑल लिविंग अ जोक, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स, मोस्ट प्रोफाउंड थिंग्स जो कृष्णा में थी। सारी नॉलेज, सारा कूटनीति होने के बावजूद जो लड़कपन, जो मस्ती कृष्णा के अंदर थी ना, वो आपको रियल टाइम में आज आशुतोष शर्मा सर के अंदर देखने को मिल सकती है। जितना सीरियसली होकर के वो किसी भी पॉलिसी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उतने ही नेक्स्ट मोमेंट उतना ही बड़ा जो क्रैक करके पूरे हॉल को हंसा सकते हैं। दैट इज़ द क्वालिटी दैट ही हैज़, दैट मेक्स हिम entirely different kind of a leader who brings joy at work, who makes everybody seen and heard, who makes sure that everybody is taken care. मैंने खुद उनके साथ बहुत सारे projects में काम किया है और मेरा अपना experience है कि the way he makes everybody seen, that is something every leader has to learn.
फिर आया विज्ञान को जनता से जोड़ने का सूत्र, साइंस फॉर सोसाइटी। INSA के गलियारों में अक्सर यह धारणा रही थी कि विज्ञानी वही है जो लैब में प्रयोग करता है, जिसे पेपर्स छपवाने आते हैं और जिसकी टेबल पर माइक्रोस्कोप रखा हो। पर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इस सोच को पूरी तरह उलट दिया। उन्होंने कहा, विज्ञान सिर्फ बनाने वालों का नहीं, विज्ञान उन सब का है जो उसे जमीनी हकीकत में बदलते हैं। और यही खुला एक नया द्वार, विविधता का एक और पहलू, वो कहते हैं।
So another aspect of diversity is that look, there are two different kind of stakeholders of science. The first one is the usual one that we all know, is the people who create science who are called scientists. But there are a whole lot of people who use science to create opportunity, and they are equal stakeholders of science. And so this is another part of diversity that we have brought in academy. So we created two new committees to elect fellows, and these two new committees are, one is called Science and Translation and other is called Science for Society. Wow. So basically, see, I may not be a scientist, but I'm providing a leadership through an industry which is based on science, which is creating opportunities. To give you an example, let us say last year we elected Narayan Murthy under that category, or let's say Krishna Ila, you know, vaccine person, or similar kind of people, so that we would have 20 such fellows every year elected who provide leadership in science, and they work through either industry or government or NGO or even a startup, or you can even be an investor in deep tech. Okay, so because all of that is allowing our science to flourish, right? So they are equal stakeholders of science.
हमारे पास दो तरह के स्टेकहोल्डर हैं, एक वो जो विज्ञान को जन्म देते हैं, वैज्ञानिक, और दूसरे वो जो विज्ञान से अवसर बनाते हैं। पहली बार INSA में सिर्फ साइंस का निर्माता नहीं, बल्कि साइंस को संभावना देने वाला को भी समान स्थान दिया गया। उन्होंने दो नए वर्टिकल कमेटी गठित की, साइंस इन ट्रांसलेशन, साइंस फॉर सोसाइटी। ट्रांसलेशन यानी विज्ञान को भाषा नहीं, व्यवहार में बदलना, और सोसाइटी यानी विज्ञान का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान नहीं, कल्याण होना चाहिए। अब इन कमेटियों के जरिए हर साल 20 ऐसे लोगों को INSA फेलोशिप दी जा रही है, जो भले ही लैब में ना हों, लेकिन विज्ञान से समाज में क्रांति ला रहे हैं, जैसे नारायण मूर्ति। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के सहारे भारत को आर्थिक क्रांति की राह दिखाई, जैसे कृष्णा एला, जिन्होंने कोविड संकट में भारत बायोटेक के जरिए मेड इन इंडिया वैक्सीन दी। ये वो चेहरे हैं जो विज्ञान को किताबों से निकालकर लोगों की धड़कन बना देते हैं। अब कोई स्टार्टअप फाउंडर हो सकता है, कोई डीप टेक इन्वेस्टर, कोई एनजीओ में इनोवेशन से समाज बदलने वाला व्यक्ति, या कोई उद्योगपति जो विज्ञान से नौकरियां पैदा कर रहा है। हम विज्ञान को केवल एक कोट में नहीं बांध सकते, वो हर उस हाथ में है जो समाधान बनाता है। अब इंसान की फेलोशिप केवल एकेडमिक पेपर्स या शोध पत्रों की गिनती नहीं देखती, वो देखती है प्रभाव, इम्पैक्ट ग्रेटर देन पेपरवर्क। पहली बार ऐसा हुआ कि एक संस्था ने स्वीकार किया कि विज्ञान तभी सार्थक है जब वो विकास में बदले, और तभी तो INSA प्रोफेसर शर्मा की अगुवाई में अब एक मंच नहीं एक आंदोलन बन गई है, जहां हर वर्ग, हर विचार, हर प्रयास का स्वागत है। ये सोच सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, विज्ञान की आत्मा को पहचानने की सोच है, और शायद यही वो बदलाव है जिससे एक अकादमी एक समाज का आईना बन जाती है। नीति निर्माण, विज्ञान का अगला मोर्चा। प्रोफेसर शर्मा ने महसूस किया कि केवल वैज्ञानिक चर्चा से नहीं, नीति निर्माण में भागीदारी से ही समाज पर वास्तविक असर पड़ेगा। INSA के भीतर एक पॉलिसी सेंटर की स्थापना की गई, एक ऐसा मंच जो सरकार को सुझाव दे, श्वेत पत्र व्हाइट पेपर्स तैयार करे और नीतिगत दिशा में मार्गदर्शन दे। इस केंद्र ने तीन प्रमुख विषयों को अपनाया, उद्यमिता, स्थायित्व, नई तकनीकें, यही AR VR, क्वांटम टेक, और इन तीनों के संगम से बने देशव्यापी सम्मेलनों की श्रृंखला। उत्तर पूर्व भारत से शुरू होकर श्रीनगर, जोधपुर और दक्षिण भारत तक, हर सम्मेलन में स्थानीय चुनौतियों, अवसरों और समाधान को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सिफारिशें बनाई गईं। उदाहरण सस्टेनेबिलिटी ऑफ AI, दिल्ली में एक अहम सम्मेलन हुआ, विषय था AI के जरिए स्थायित्व और AI की स्थायित्व पर असर। डिजिटल दुनिया के बढ़ने से आज 6% वैश्विक ऊर्जा खपत केवल डिजिटल प्रोसेसिंग से हो रही है, और ये आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। क्या हम इसके पर्यावरणीय और मानसिक प्रभाव को समझ रहे हैं? इसी पर INSA काम कर रहा है, आगे की सोच के साथ। INSA अब केवल एक संस्था नहीं रही, ये एक आंदोलन बन गई है। वो शाम हल्की ठंडी थी, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा एक छोटे से मंच पर बैठे थे। सामने कुछ छात्र, कुछ युवा शोधकर्ता और कुछ ऐसे लोग जो अपने जीवन की दिशा तलाश रहे थे। किसी ने पूछा, सर अगर हमें सिर्फ एक बात सिखानी हो तो वो क्या होगी? वो मुस्कराए, एक लंबी सांस ली, फिर बोले बिल्कुल उसी अंदाज में जिसमें अनुभव और विनम्रता एक हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि इस दुनिया में कोई बूढ़ा नहीं होता, उम्र सिर्फ एक संख्या है। मैं जवान हूं, तुम थोड़े मुझसे ज्यादा जवान हो, पर इस मजाक के पीछे एक गहरा सच था कि अगर तुम किसी को उसकी उम्र या लिंग या जाति या आर्थिक स्थिति से देखने लगो तो तुम असल इंसान को कभी समझ नहीं पाओगे। हम लोगों को इमेज से पहचानने लगते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ उसकी छवि नहीं होता, वो उसकी कहानियों, संघर्षों, गलतियों और सपनों से बना होता है। फिर उन्होंने वो बात कही जिसे सुनकर हर कोई नोटबुक छोड़ बस सुनना चाहता था। अगर आपको जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली, IQ, वो जिसे हम स्कूलों में मापते हैं, जिससे हम परीक्षा पास करते हैं। दूसरी, EQ, इमोशनल क्वोशेंट, जब जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा ना करे, जब रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ हो, जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें, तो तुम कैसे खड़े रह पाते हो, ये EQ तय करता है। दिमाग तो हर किसी के पास है, पर दिल से कौन लड़ेगा ये मायने रखता है। और फिर उन्होंने पेश किया अपना निजी आविष्कार EQ2, एम्पथी क्वोशेंट। मतलब ये नहीं कि तुम बस अपने दर्द समझो, बल्कि दूसरों के जूते पहनकर देखो कैसा लगता होगा उन्हें चलना। क्योंकि जब तुम दूसरों की नजर से देखना सीख जाते हो तो तुम सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, एक बेहतर समाज का हिस्सा बनते हो। और फिर आया चौथा सूत्र, SQ, सोशल क्वोशंट। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक मोहल्ला हो, एक शहर हो, एक देश हो। तुम्हारा सुख तुम्हारे आसपास के लोगों के सुख से जुड़ा है। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारा पेट भी कभी पूरा नहीं भर सकता। ये अकेले की सफलता नहीं, समाज की समृद्धि का सवाल है। डीएसटी में रहते हुए उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास लैब्स हैं, वैज्ञानिक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों ना इन्हें समाज की सेवा में लगाया जाए। चाहे वो कोई एमएसएमई हो, किसान हो, शिक्षक हो या महिला उद्यमी, अगर हम अपने वैज्ञानिक संसाधनों से किसी की मदद कर सकते हैं तो वही है असली विज्ञान जो समाज में सांस ले। जब विज्ञान बंद कमरों से निकलकर खेतों, गलियों और गांवों तक पहुंचे, तभी तो वो जीवित है, तभी तो वो सार्थक है। फिर उन्होंने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान फलसफा साझा किया, सफलता और असफलता ये दोनों ही स्थायी नहीं है। तो ज्यादा उत्साहित मत हो जाना जब सब ठीक हो, और टूट मत जाना जब कुछ भी ठीक ना चले। और फिर वो बात जिसने जैसे सैकड़ों दिलों में एक चिंगारी जला दी, जिंदगी आईक्यू से नहीं चलती, उस जुनून से चलती है जो तुम अपने काम में लाते हो। पैशन इन एक्शन, लक्ष्य से नहीं प्रक्रिया से प्यार करो, क्योंकि अगर तुम अपने काम से मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। और अगर सफलता न भी मिली तो भी उस सफर ने तुम्हें एक मकसद तो दिया। तो अगली बार जब तुम किसी नई राह पर चलो तो याद रखना प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की ये बात, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं कि तुम क्या बनते हो, बल्कि ये है कि क्या तुम औरों के बनने में मदद करते हो।
एंड फाइनली आई वुड जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग दैट द सक्सेस दैट वी कॉल, व्हाटएवर सक्सेस दैट वी कॉल, बोथ सक्सेस एंड फेलियर are not permanent. So therefore, they are not a great deal to be elated when one is successful and not be depressed when one is not successful. Prepare for the future with whatever success and failures that we have behind us. And passion does all the work. So it is not only IQ, let me also add in end that it is my passion, it is my drive, not negative drive, not negative passion, but my passion for everybody to succeed, which does all the work. So this is not about being attached to the outcome of my action, but passion in action. Passion in action will certainly lead to success, but even if it does not lead to success, at least it has given my life a purpose. So I stop there.
जब एक वैज्ञानिक अध्यक्ष बना तो उसने केवल प्रयोग नहीं किए, उसने उम्मीद बोई, विविधता लाई और विज्ञान को हर व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया। यह अध्याय बताता है कि कैसे नेतृत्व, दृष्टि और जज्बा मिलकर विज्ञान को समाज की ताकत बना सकते हैं।